ओम शांति। साधनाएं दो प्रकार की होती है, एक साधना अंतरंग साधना और दूसरी बहिरंग साधना, एक इंटरनल दूसरी एक्सटर्नल। अध्यात्म के मार्ग में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो सभी योगी इन दो प्रकार की साधनाओं को करते हैं। कुछ साधनाएं बाहर की है और कुछ साधनाएं अंदर की है, परंतु तन को जोगी योगी या सन्यासी बनाना शायद बहुत आसान है, परंतु मन को साधनाओं के मार्ग में रत करना थोड़ा मुश्किल। इसलिए हिंदी में कहावत है, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोवे। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक है शरीर का तप और दूसरा है मन का तप। एक है शरीर की साधना, दूसरी है मन की साधना। शायद शरीर की साधना कईयों के लिए सहज हो, परंतु शरीर की साधना करने के बाद भी मन सध जाए ऐसा होगा ही, यह जरूरी नहीं है। कुंभ मेले में कुछ ऐसे साधु भी होते हैं जो अपने शरीर को राख लगा देते हैं, परंतु फिर भी एक छोटा सा आईना अपने पास रखते ही है। क्या देखने के लिए? चेहरा देखने के लिए। राख ठीक से लगी है या नहीं? राख प्रतीक है वैराग का, संसार से वैराग, देह से वैराग, परंतु फिर भी छोटा सा आईना अभी भी रखा हुआ है। एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, 30 वर्ष हो गए, प्रवचन करते फिर रहा है, साधनाएं करता है, आश्रम बना लिया, शिष्य है, छोड़ दिया था संसार 30 वर्ष पहले। एक दिन कोई खबर देता है कि आपकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया है। वो कहता है, अच्छा हुआ झंझट मिटी। मतलब अब तक भी झंझट थी, अब तक भी याद थी। शरीर तो शरीर से सन्यासी बन गए, परंतु मन अभी भी संसार में ही आसक्त है। यह वैराग नहीं, यह साधना नहीं। एक और व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ा धनपति था, सारी धन संपदा गरीबों में बांट दी और सन्यासी बन गया। जब गरीबों में धन संपत्ति बांटी थी तो अखबार में खबर आई थी, इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपदा को, पैसों को गरीबों में बांट दिया और खुद सन्यासी बन गया, भगवान के मार्ग पर निकल गया, संसार के कल्याण के लिए निकल पड़ा। इस बात को कई वर्ष हो गए, परंतु हर प्रवचन में ये महाराज जी ये बात जरूर बताते हैं कि मैंने अपने लाखों की संपत्ति को लात मार दी, और उस समय जो अखबार में खबर छपी थी उसकी कटिंग अभी भी है न्यूज़पेपर की। क्या ये वैराग है? सभा में एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, शायद लात ठीक से नहीं लगी। शरीर को जोगी बना देना, तपस्वी बना देना, ऊपर ऊपर से, चाहे प्राणायाम या फिर शरीर के हट योग या उस तरह की सारी साधनाओं से, यह तो कोई भी कर सकता है, परंतु मन को तपस्वी बना देना, मन को विरक्त बना देना, ये आंतरिक साधना है। तो इस मन को जोगी कैसे बनाए? इससे पहले कि हम इस क्लास की शुरुआत करें, फिर से एक योग का छोटा सा प्रयोग करेंगे। अलर्ट होके फिर बैठ जाएंगे सभी, डायरी पेन नीचे, थोड़ा सा दूर दूर बैठेंगे, अंग से अंग ना लगे। जगह काफी है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठ जाएंगे, या सामने आ सकते हैं थोड़ा, या पीछे जाए, जैसे भी, एक दो पीछे एक बीच वाला सामने। तो एक छोटा सा योग का प्रयोग, ठीक है? भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, महसूस कर रहा हूं स्वयं को, शरीर के भान से परे, एक प्रकाशमयी आत्मा, तन को छोड़कर अब मैं जा रही हूं ऊपर, सूक्ष्म शरीर धारण कर पहुंच जाती हूं सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त बाप दादा, मेरे सम्मुख बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा की भ्रुकुटी से, नैनों से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरे सारे बोझ बाबा ने हर लिए हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। धीरे धीरे वापस नीचे उतरता हूं। अपने स्थूल देह में प्रवेश करता हूं। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति संपूर्ण मौन मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। संपूर्ण हल्कापन अब इसी आत्माभिमानी स्थिति में बिना कोई आवाज के सभी अपने ही स्थान पर खड़े रहेंगे। धीरे धीरे अपने ही स्थान पर खड़े रहना है। संपूर्ण मौन में बिना कोई आवाज के संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति देखना है। स्वयं को चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ अब बहुत धीरे धीरे अपने ही स्थान पर गोल घूमना है। सभी को आत्माभिमानी स्थिति में आत्मिक दृष्टि देते हुए सभी अपने स्थान पर बहुत बहुत धीरे धीरे घूमेंगे। जो भी दिख रहा है केवल आत्मा। पांच मिनट में एक चक्कर लगाएंगे गोल, रुक रुक के चमकती हुई मणियां है केवल। बहुत धीरे धीरे रुक रुक के मणियों का जैसे आगार है, सबको फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक दृष्टि, केवल आत्माएं हैं, देह है ही नहीं। फिर एक बार घूमेंगे बहुत धीरे धीरे, केवल मस्तक मणि दिखाई दे रहा है। संसार की महान आत्माओं का संगठन, प्रभु परिवार, पूज्य आत्माओं का संगठन, देव कुल की महान आत्माओं का संगठन, फरिश्ता स्वरूप, आत्मिक दृष्टि, मौन, धीरे धीरे फिर से अपने स्थान पर बैठेंगे। वही आत्माभिमानी स्थिति, आवास से परे की अवस्था, कोई हलचल नहीं, आपस में कोई बात नहीं, आत्मकेंद्रित दृष्टि, मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें निकल चहुओर फैल रही, ओम शांति। मन को जोगी बनाने के लिए हम फिर से ऐसी पांच बातें जो कि हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, इस ज्ञान को धारण करो। जैसे बाप डिलीवरी करते हैं आज सुबह की साकार मुरली, वैसे तुम भी करो इस ज्ञान की। क्या हम करें जिससे ये मन जोगी बन जाए? क्या हम करें जिससे भगवान के प्यारे बन जाए? क्या हम करें जिससे ये जीवन भोगी जीवन ना रहे, संसारी जीवन ना रहे, महान बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए? तो इस मन को जोगी बनाने के लिए हम पांच फिर से पांच बातें देखेंगे. सबसे पहला वैराग, सबसे पहला वैराग. जब तक जीवन में वैराग नहीं तब तक अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती. वह चित्त जो भोग में डूबा हुआ है, वह आत्मा जो विलासिता में डूबी है, अध्यात्म के उन उच्चतम अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकती. जब तक विषय विराग ईश्वरे अनुराग, एक से अनुराग, एक से प्रेम और एक से प्रीति की अवस्था नहीं आती और इस संसार की चीजें, संसार से वैराग नहीं आता है, तब तक अध्यात्म का यह पथ प्रशस्त नहीं हो सकता. यदि हमें तेजी से आगे बढ़ना है, फास्ट, जैसे कल की जो मुरली है, आने वाले कल की, कुमारियों से मुलाकात, लगन है, परंतु इस लगन को अब अग्नि बना दो. लगन है पर इसमें और फोर्स भर दो. लगन है पर आग चाहिए, आग. यदि कहीं आग जल रही हो तो कोई दूसरा हिम्मत नहीं करेगा विघ्न डालने का. यदि कहीं आग जल रही हो तो कोई जानवर समीप नहीं आएगा. कुमारी अर्थात निर्बंधन, कोई बंधन उसे स्वीकार नहीं. ऐसी वैराग की अग्नि भी अंदर प्रज्वलित हो. और वैराग की सरलतम परिभाषा दो शब्दों में है. वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी. ये संसार असार है, यहां सार नहीं, यहां पाने योग्य कुछ नहीं. और ये जो देह है और सारा संसार इस देह में ही आसक्त है, और सारा संसार इस देह की ही वासना में डूबा हुआ है, और सारा संसार इस देह को ही सुंदर समझता है और देह का ही प्रदर्शन है, और सारी मीडिया और सारे किताब और सारे उपन्यास और सारी फिल्में केवल और केवल देह केंद्रित है. समाज देह में डूबा है, देह का ही बाजार है. वैराग अर्थात जो देह मिट्टी भासित हो, कहां है इसमें सौंदर्य और कैसा है इसमें सौंदर्य, और कहां है इस संसार में सार, कहां भाग रहे हैं सारे लोग. मनुष्यों का ये समंदर है, एक एक भाग रहा है, कहां उसे भी नहीं पता, दिशाहीन लक्ष्यहीन. मैं भी उनमें से तो नहीं. क्या है इस देह में, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन के अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं. और इसी में व्यक्ति डूबा है. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, गीता में लिखा है अर्जुन साक्षी होकर देख, दर्शन कर जन्म का, मृत्यु का, जरा का और व्याधि का. दुख ही पाओगे, जन्म में दुख, मृत्यु में दुख है. स्वजनों की मृत्यु दुख, जरा बुढ़ापा, दांत गिर गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, लाठी सहारा चाहिए, सुनाई नहीं देता, खा नहीं सकते, कोई देखभाल करने वाला नहीं, व्याधि दुख, सरकारी अस्पताल में गए हैं, देखा है मरीजों की हालत, जनरल वार्ड, जनरल हॉस्पिटल, कहां है सौंदर्य? ये शरीर में ही आसक्त है संसार, इस चमड़ी में। जाओ जाकर देखो चक्कर लगाकर, कैंसर के पेशेंट्स को, डायलिसिस के पेशेंट्स को, टीबी के पेशेंट्स को, क्या हाल है, कैसे जी रहे हैं? कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मर रहे हैं। और फिर भी मनुष्य को वैराग नहीं आता है। किसी एक शहर में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, जिसे बहुत सी बीमारियां थी, शरीर से दुर्गंध आता था, इतना वो कैंसर फैला हुआ था, भिखारी था, बूढ़ा हो गया था, चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, सड़क किनारे भीख मांगता था। एक युवक रोज उसको देखता था, दया तो आती थी पर घृणा भी आती थी, सोचता था, थोड़ा सा धार्मिक चित्त का व्यक्ति था, सोचता था ये बूढ़ा व्यक्ति मर क्यों नहीं जाता है, कितनी जीवन से इसको प्रेम है, अभी भी एक पांव कब्र में है फिर भी जीवन के प्रति इतनी जीवेचना, जीवेशना क्यों, क्या ये भी कोई जीना है? दिन भर भीख मांगता है, शरीर से दुर्गंध है, दर्द है, कैसा जीवन, इससे तो मर जाना अच्छा है। रोज उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है, पहले दया आती थी फिर घृणा भी आने लगी। एक दिन रहा नहीं जाता है और उसके पास जाकर उसको बताता है, क्या इतना तुमको जीवन से मोह है, किस लिए जी रहे हो, क्या उद्देश्य है, क्या तुम्हारे वजह से संसार में किसी का भला हो रहा है, किसी का कल्याण हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति, वो बीमार व्यक्ति बहुत सुंदर उत्तर देता है। वो कहता है, मैं इसलिए जीवंत हूं ताकि दूसरे मुझे देखे और सीखे कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। यही है निष्पत्ति, यही है अंतिम परिणाम। फिर भी वैराग नहीं आता है संसार से, फिर भी डूबा है उसी में, उसी भोगों में, शरीर के भोग। कभी तृप्त नहीं होता है शरीर, कितना भी उसको कुछ भी दे दो, और मरते समय भी वंस मोर की कामना से ही व्यक्ति मरता है। यदि मन को जोगी बनाना है, मन को तपस्वी बनाना है, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? वैराग। गीता में पूछा गया है, हे गोविंद, चंचलम ही मनः कृष्ण, मैं कैसे अपने मन को वश में करूं, क्या मैं युक्ति करूं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। हे अर्जुन, अपने मन को यदि वश में करना है तो दो चीजें धारण करो, एक अभ्यास, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, और दूसरा वैराग, डिसइंटरेस्ट। साक्षी होकर देखो संसार को, क्या है दुखों की महफिल, शोक वाटिका, विषय वैतरणी नदी, धधकता हुआ नरक। किस दिशा में संसार जीवन जा रहा है, नरक की ओर या स्वर्ग की ओर? क्या हम कर रहे हैं? वही जो संसार के लोग कर रहे हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम वो नहीं कर सकते जो संसार वाले कर रहे हैं, तुम वो नहीं देखते जो संसार देख रहा है। तुम वो नहीं सुन सकते जो संसार सुन रहा है. तुम अलग हो, अल्लाह लोक हो. चिंतन, मनन और वैराग धारण करना है पहली बात. दूसरा तपस्या. मन को जोगी यदि बनाना है तो क्या चाहिए? तपस्या. तपस्या शब्द में ही कितनी ऊर्जा भरी है. तपस्या शब्द कहते ही मन में वैराग का उदय होता है. संसार के लोगों के कान में भी कह दिया जाए तपस्या और वैराग, भागते हैं लोग ऐसे शब्दों से, डर लगता है. पर ब्राह्मण आत्मा अर्थात तपस्वी, साकार महावाक्य है बाबा के, सफेद साड़ी पहनी हो, बाल खुले हो, हाथ में मुरली, तुम हो राज ऋषि. तुम्हारा परिधान तपस्वियों का परिधान है, तुम्हारे वस्त्र तापसी वस्त्र है, वनवाह में हो तुम. स्वयं को फिर से तपस्या के मार्ग पर लाना है. इस संसार के भोग हमारे लिए नहीं है, हमें तपस्वी बनना है. यह संकल्प ही मन को सुख देगा. यह संकल्प ही जो छोटी मोटी अटैचमेंट्स निर्माण कर रखी है इसमें उसमें, उन सब से आत्मा को मुक्त करेगा. मुझे तपस्या करना है, जीवन को तापसी बनाना है, बहुत बल मिलेगा आत्मा को, स्वतंत्रता का बल, पावर ऑफ फ्रीडम. कैसे तपस्या करें, कहां तपस्या करें, कब तपस्या करें, ये सारे प्रश्न मन में आने लगे. दादियों की और वरिष्ठ भाई बहनों की तपस्या पर क्लासेस है. तपस्या मास मनाया गया है कभी कभी, तपस्या वर्ष हुआ है इस यज्ञ के इतिहास में. मुझे भी स्वयं को तपाना है. संकल्प, जब तक ईंट को भट्टी में नहीं डालेंगे वो पकेगी नहीं, परिपक्व नहीं होगी. अभी अभी संडे की मुरली में बाबा ने ज्वालामुखी योग के विषय में कहा था, आग का उदाहरण दिया था. तपस्या आग है. प्लानिंग फॉर तपस्या. क्या करना है? प्लान करना है. एकांत में जाओ, मौन में जाओ, वह इंटरनल स्पेस में जाओ. वहां बैठकर जीवन की प्लानिंग करो. बाहर वाले सब वैसे ही रहेंगे, शायद विरोध करने वाले हैं, निंदा करने वाले, ग्लानी करने वाले, अपमान करने वाले, झूठा आरोप लगाने वाले, उन सभी के बीच में बैठकर ही संपूर्ण बनना है. संपूर्ण अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बना जाता है. सारे विरोधी है और हमारी तपस्या चालू है. यही वास्तव में तपस्या है. न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेंगी. तुम्हें बदलना है, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा. ना स्थान बदलेगा, जिस स्थान पर रहते हो वहीं रहना पड़ेगा. ना व्यक्ति बदलेंगे, जो आसपास है, ऑफिस में, घर में, बॉस, सीनियर, कॉलिग्स, पति, पत्नी, बच्चे, कोई नहीं, पड़ोसी, वो वैसे ही रहेंगे. ना परिस्थिति बदलेगी. हम सोचे अचानक ये परिस्थिति गायब हो जाए, तुम्हें तुम्हें ही बदलना है। जब तुम बदल जाओगे तो तीनों ही बदलेगा। आंतरिक आध्यात्मिक क्रांति तपस्या से आएगी। उस तप के किसी क्षण में यकायक कुछ तो होगा, प्लानिंग फॉर तपस्या। सारे दिन की प्लानिंग, सुबह क्या करे, शाम को क्या तपस्या करे। इस क्लास में ऐसे कितने हैं जो रेगुलर नुमा श्याम का योग करते हैं, रेगुलर, जैसे अमृत वेला शक्तिशाली होता है वैसे नुमा श्याम का योग भी शक्तिशाली हो। जो अनुभव सुबह होते हैं वैसे ही अनुभव शाम को भी हो। आत्मा की बैटरी दो बार चार्ज करनी होती है, सुबह चार्ज की हुई शाम तक शायद डिस्चार्ज हो जाए। वो योग फिर जरूरी नहीं है कि एक स्थान पर ही बैठकर करे, कहीं हम ट्रेवल में है, सेवा में है, कहीं पर भी है, फिर भी बुद्धि को संसार से अलग कर कर सीधा उस तक पहुंचाना। तो दूसरी पॉइंट है तपस्या। तीसरी पॉइंट त्याग। मन को यदि जोगी बनाना है तो वो सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जो अभी बाधा है। वो शायद कोई संबंध हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाकर रखा है जहां तपस्या मुश्किल हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ रखा है, पुरुष या स्त्री, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बना के रखा है, शायद वो दोस्ती ही बाधा है, शायद वो फ्रेंडशिप ही बाधा है। लग रहा है ये सेवा का संबंध है, इससे सेवा बहुत हो रही है, परंतु बंधन है। अपनी वासनाओं को प्रेम की संज्ञा नहीं देनी है, अपनी आसक्तियों को सेवा का नाम न दो। हर वो संबंध, हर वो वस्तु, हर वो स्थान जो मन को खींचता है, जिसको हम मिस करते हैं, जो याद आता है बार बार, वो सारे दोस्त जिनको हमने सोशल मीडिया पर बनाकर रखा है, जिनको लगता है कुछ कुछ बताए जो जीवन में हो रहा है, व्यक्तियों से शेयर करते रहो, भगवान से शेयर करना धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। किसी की आदत होती है, हर चीज उंगलियां बहुत फास्ट काम करती है टाइप करने में, हर चीज टाइप करते हैं फटाफट फटाफट, हो रहा है टाइप, हर चीज टाइपिंग चालू है, व्हाट्सएप मैसेजेस तेजी से। स्वयं को देखना है और वो सारी चीजों को छोड़ देना है जो बाधा है इस जीवन में, जो हमें लग रहा है ये श्रीमत के विरुद्ध संबंध बना के रखा है और उसकी पालना कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है ये सेवा जो कर रहे हैं ये भी श्रीमत विरुद्ध है, जो हमें लग रहा है कि ये जो वस्तु जिसको हमने पकड़ के रखा है यही बाधा है, छोड़ो। वो जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है, धन संपत्ति साधन व्यक्ति वैभव कुछ भी हो सकता है, या कोई स्मृति, कोई यादें, कोई मेमोरीज, या कोई इमोशन, कोई भावना जज्बात पकड़ के रखा है। वो चीज आई और चली गई और हमने अब तक पकड़ के रखा है, या कोई गलती भी हो सकती है, गलती की थी उसी का चिंतन कर रहे हैं अब तक, पश्चाताप। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, सीखो और आगे बढ़ो, समय बहुत कम है, समाप्ति वर्ष चल रहा है। बाबा का पाठ भी धीरे 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 समाप्ति की ओर है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। त्याग में बल है, इस भट्टी से ऐसी पांच चीजें निकालना है जिनका मुझे त्याग करना है। अनफ्रेंड, हजारों फ्रेंड बना के रखा है मीडिया पर, अनफ्रेंड, अनफ्रेंड कर दो उनको। हजारों संबंध बढ़ा के रखे हैं, नाम सेवा का दे रहे हैं, उप अंदर से कुछ और है। त्याग, अध्यात्म की इमारत त्याग पर खड़ी है। और जिन्होंने त्याग किया है वो अपने त्याग को भूले हुए हैं। अपने आप को याद दिलाओ कि मैंने ये त्याग किए थे बाबा के पास आने के लिए। एक माता है, अपने परिवार से झगड़ा करती है, सब कुछ करती है, मधुबन में आती है, मधुबन निवासी बन जाए और वहां आकर फिर किसी और के मोह में फंस जाए तो इसको क्या कहेंगे। सारा संसार छोड़कर कोई व्यक्ति आता है और यहां फंस जाता है। सोने की जंजीर, तीसरा त्याग, चौथा ज्ञान मनन, चौथा ज्ञान मनन से स्वयं को योगी बनाओ। मधुबन का हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 108 विधियां निकाली है ज्ञान चिंतन की। कुछ हमारे पास है यहां पर 66, बाकी दूसरी दूसरी क्लासेस में शायद आप सुन सकते हो। यही एक विधि है जिससे हम स्वयं को बिजी रख सकते हैं। ऐसी ये 66 मेथड्स है और 42 मेथड्स है। टोटल मुरली अध्ययन की 108 अलग अलग विधियां। एक ही मुरली अगर हम उसी ढंग से रोज पढ़ते रहे या सुनते रहे तो बोर हो जाएंगे। सेंटर पर गए, डायरी लेकर मीठे बच्चे लिखा, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, फिर डायरी बंद की और कॉपी डायरी बाहर रखी, फिर थोड़ा सा इधर उधर मुरली सुनी, थोड़ी सी नींद लग गई और फिर मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जब कहा, फिर से आंखें खुली, फिर से डायरी ली और फिर से धारणा के लिए 1, 2, फिर वरदान लिखा, फिर स्लोगन लिखा, फिर डायरी बंद की और फिर अभी कल मिलेंगे। और फिर कहते बाबा तो वही सुनाते, मैं आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनने, विनाश सामने खड़ा आया है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें देवी देवता बनना है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने है, तुम्हें ऐसा भी बनना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, आवाज फैलाना है, विकर्म को विनाश करना है, ज्ञान दान करना है, दिव्य गुणों को धारण करना है। हम कहते सब हमको पता है, इसके लिए अंदर कोई ऊपर ऊपर से सब चल रहा है परंतु अंदर कुछ नहीं हो रहा है। नवीनता चाहिए, नवीन नवीन। एक विधि इसमें से है, बहुत सारी है, एक आपको बता रहे, कॉन्ट्रास्ट मेथड। ये जो पॉइंट कही, संसार में इसके प्रति क्या मान्यता है। जैसे कल की मुरली थी गीता गीता गीता, निराकारी मत का शास्त्र है, संसार की क्या मान्यता है। ये जो उदाहरण दिया गया, ये संसार में इसके प्रति लोग क्या कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट करना, मुरली में जो बातें आई है पॉइंट्स निकालना 10 की, इस मुरली में ऐसी वो 10 कॉन्ट्रास्ट की तुलना की कौन सी बातें हैं। संसार में क्या कहा जाता है, यहां क्या कहा, आज की मुरली में क्या कहा, इस तरह की पॉइंट्स। तो ये जो विधि है इसको हमने नाम दिया था कॉन्ट्रास्ट मेथड। ऐसी अलग 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 बहुत सारी विधियां है, नवीनता लानी है हमको। उसके लिए क्या चाहिए, चौथी पॉइंट ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन, ज्ञान केवल सुनने का नहीं है, ये पिबत राम रस पीने का है, ये समाने का है, रग रग में समाने का। केवल मुरली ली और सुना दी, या ली और पढ़ ली, या सुन ली। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है, सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली सुनकर वापस आना, ये है पुरानी चाल। क्या है ये? पुरानी चाल। नए युग में जाना है तो नई चाल होनी चाहिए, नए मार्ग होने चाहिए, नया चिंतन होना चाहिए। उसके लिए एक चीज अगर हो सके तो, यदि पूरा परिवार ज्ञान में चलता है तो अपने घर में एक छोटा सा ग्रुप बनाना है और रात में सोने से पहले मुरली का डिस्कशन करना है, चर्चा। आपस में जब तक मुरली का डिस्कशन नहीं होगा तब तक यह ज्ञान स्पष्ट हो ही नहीं सकता है। यह ज्ञान इतना गुह्य है, ये गुप्त ज्ञान है, इसमें गुह्य बातें। बाप आए हैं तुम्हें नई से नई बातें सुनाने, बाप आए हैं तुम्हें गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाने। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य प्रत्यक्ष सुसुखम कर्तव्ययम। गीता में लिखा है, हे अर्जुन सुन, ये राज विद्या राज गुह्यम है, सभी विद्याओं का ये राजा है। गुह्यतम ये ज्ञान है, पवित्र को पवित्र करने वाला है, सुखकर है, सुसुखम। तो क्या करेंगे? एक छोटा सा क्या हो, ग्रुप। ग्रुप के लिए दो लोगों की आवश्यकता है। अगर जिनका नहीं है, फोन पर मुरली डिस्कस कर सकते हैं। सुबह की मुरली से बजाय ऐसे लिखने की, वाक्य प्रश्न उत्तर स्लोगन, पॉइंट्स लिखो खाली, 10 पॉइंट्स जो एकदम नए हैं, जो आज तक कभी सुने नहीं थे, और फिर उसके ऊपर चर्चा, उसका डिस्कशन। जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे ज्ञान क्या होगा, स्पष्ट होगा। तो क्या करना है? चौथा पॉइंट, ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन करेंगे सभी। जो जो पॉइंट समझ में नहीं आती, एक दूसरे से मिलने के बाद ये पूछो कि आज बाबा ने जो स्लोगन में कहा ये क्या कहा, आपको समझ में आया, ये वरदान में क्या था, ये कौन सा नया शब्द था, बाप आए हैं तुम्हें चौप चीनी खिलाने, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं मुरलियों में। इस यज्ञ में अंतिम डेंगिया पड़ेगी, नए नए शब्द आते हैं। बाप को ये क्या रहता है, उकीर रहता है बच्चों को घर ले जाने का, नए नए शब्द आते हैं जो कभी सुने नहीं होंगे। आपस में चर्चा करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों का कर्तव्य है आपस में ज्ञान चर्चा करना, बजाय इसके कि किसी की ननद क्या कर रही है और किसी की बहू ने क्या किया, या उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो गया, क्या चर्चा करेंगे। ये भगवान ने कहा, क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, तुमको क्या समझ में आया, हमको बताओ। नहीं तो मनुष्य का मन क्या करता है, बाहर की बातों में लगा रहता है, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इससे उसको राहत मिलती है, झूठी राहत। तो चौथी पॉइंट, ज्ञान चर्चा, और पांचवी, योग अभ्यास। योग अभ्यास, योग में भी नवीनता लानी चाहिए, वही योग जो 10 साल पहले सीखा था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और मुझसे शांत स्वरूप आत्मा हूं, यही चालू है अभी तक। हर दिन योग में नयापन हो, हर दिन योग में नवीनता हो, कल जो योग किया था वो आज नहीं, आज नवीन। जो भी मुरली पढ़ते हो, उस मुरली को पढ़ते पढ़ते उसको ड्रिल में कन्वर्ट कर दो। मुरलियों में बाबा ने कहा है, बाप के साथ पिकनिक करो, ज्ञान सूर्य से किरणें लो, ज्ञान चंद्रमा से चांदनी लो, खेल कूद करो, तीनों लोक की सैर करो, संकल्प का बटन दबाओ, बुद्धि रूपी विमान में बैठो, डबल रिफाइंड पेट्रोल भरो और उड़ो। न्यू मेथड्स, न्यू ड्रिल्स ऑफ योगा। क्या करना है? नई मेथड्स, नए ड्रिल निकालनी है। हर बार वही वही नहीं, मैं आत्मा हूं, फिर सूक्ष्म वतन में गई और परम धाम में गई और फिर वापस आ गई। नयापन, कुछ तो ऐसा नया कि जो आज तक योग हमने किया नहीं होगा, वैसा योग हमें आज करना है। तो अभी हम फिर से एक योग का प्रयोग करेंगे। अलर्ट होके सभी बैठ जाएंगे। पांचों ही बातें याद रखनी है। पहली वैराग, दूसरा तपस्या, तीसरा त्याग, चौथा ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन। शास्त्रों में तीन बातें लिखी है, श्रवण मनन निनिध्यासन। श्रवण अर्थात पहले सुनना, फिर उसका मनन करना जो सुना, और फिर निनिध्यासन अर्थात उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। खाली सुनने तक नहीं रह जाए हमारा ज्ञान। कैसी थी क्लास? अरे तू आए क्यों नहीं, क्लास बहुत बढ़िया थी। बोलते हैं ना एक दूसरे को, तुमको आना चाहिए था। अच्छा क्या था क्लास में वो मत पूछो, बस क्लास बहुत बढ़िया थी, तुमने मिस कर दी, पर क्या था वो नहीं पता। ये क्लास बहुत ही अच्छी है, सुपर क्लास, क्या कर दिया फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड की? अच्छी थी, दूसरे के पास क्लास आई, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, उसने देखा फॉरवर्ड, फिर चौथे के पास गई, उसने देखा बहुत ही अच्छी क्लास है फॉरवर्ड। वो क्लास घूम रही है ब्राह्मण परिवार में अनाथ, किसी को सुनने का टाइम ही नहीं है, सब क्या कर रहे हैं खाली फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। कोई इस सेंटर पे मेल कर रहा है, कोई उधर मेल कर रहा है। तुम ये क्लास जरूर सुनना। तुमने सुनी क्या? हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जरूर सुनना, पर हर एक दूसरे के कल्याण में लगा है। और बिचारी क्लास का क्या हाल है? सुन भटक रही है, कोई भी सुनने को नहीं है। तो ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, वो क्लास केवल सुनने तक ही नहीं रहे। क्लास सुननी भी है तो ऐसे सुनो जैसे अभी सुन रहे, पॉइंट्स निकालो उसकी, पॉज पॉइंट्स, पॉज पॉइंट्स, पॉज पॉइंट्स। 10 पॉइंट एक क्लास सुनी दादी की या किसी भी महारथी की, पॉइंट्स निकाल लिए, अब क्लास को बाजू में रख दो, अब ये पॉइंट्स को जेब में डाल दो, सारे दिन भर में बीच बीच से निकालो और उसको सोचो। स्टेशन पर खड़े, स्टैंड पर खड़े, चल कहीं और इंतजार कर रहे, ऑफिस में है, निकालो और उसको रिवाइज करो। एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन, तीन बार रिवीजन, और रात में वही क्लास फिर से सुनो, अब बिना वो पॉइंट्स के रखे, ताकि वो पक्का हो जाए। खाली फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होने वाला है। पांचवी पॉइंट, योग का अभ्यास। तो अभी हम छोटा सा योग का एक और अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। मैं फरिश्ता इस तन में बैठा हूं, देह में होते देह के भान से परे, मैं इस संसार की सबसे महान आत्मा हूं, एक तपस्वी आत्मा, एक राज ऋषि आत्मा। तपस्वियों में महातपस्वी और ऋषियों में राज ऋषि। से परमात्म शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शिव बाबा की डायरेक्ट किरणें मुझ आत्मा पर है। मैं आत्मा शक्तियों से भरती जा रही हूं, सारी कमजोरियां नष्ट हो गई, सारे बंधन टूट गए। मैं फरिश्ता मुक्त हूं। निर्बंधन स्थिति का अनुभव अब मैं देख रही हूं। मेरी आंखों के सामने संसार की दुखी आत्माएं यहीं बैठे बैठे इन सभी आत्माओं को मैं सुख की किरणें दे रही हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल संसार की विकारी और पतित आत्माओं को जा रही है। मेरे सामने अतृप्त असंतुष्ट आत्माएं सभी को मैं संतुष्ट मणि भव का वरदान दे रही हूं। मैं देख रही हूं उन सभी आत्माओं को जिनको मैंने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, सताया। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी ओर देख रहा हूं, यहां वो सारी आत्माएं हैं जिन्होंने कभी मुझे बहुत दुख दिया, सताया, परंतु आज मैं पूर्वज आत्मा इन सभी को क्षमा करता हूं। यहां सभी निर्दोष हैं, मैं अत्यंत लाइट महसूस कर रहा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, सभी मेरे मित्र बन गए। पॉजिटिव संकल्पों का यह जैसे एक प्रवाह चारों ओर बह रहा है। सकारात्मकता का सागर ओम शांति। अभी हम फिर से एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और क्लास होगी और छोटा सा योग का प्रयोग. ओम शांति.